आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी किया। इसके तहत देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी गई। प्रदेश के 2,15,00,000 से अधिक किसानों को भी इस किस्त का सीधा लाभ मिला है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा कृषि निर्यात करीब करीब दोगुना हुआ है। उन्होंने कहा कि खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है। लखनऊ के कृषि निदेशालय में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के धन से राज्य के कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक में 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन के नगरीय विकास की कार्ययोजना की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी योजनाएं चरणबद्ध ढंग से लागू हों, कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं तथा नागरिकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ दिखाई दे। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ध्वजारोहण समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ध्वज पताका का 2 बार सफल ट्रायल किया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित वर्ष 2021 के न्यायाधिकरण सुधार कानून के कुछ प्रावधान रद्द कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
मुख्य न्यायाधीश वी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ये प्रावधान केंद्र द्वारा मामूली संशोधनों के साथ फिर से लागू किए जा चुके हैं। पीठ ने कहा कि रद्द किए गए प्रावधानों से शक्ति विभाजन के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा था। पीठ ने कहा कि लंबित मामलों की अधिकता से निपटना न्यायपालिका की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, सरकार को भी यह दायित्व उठाना चाहिए। न्यायालय ने सेवा काल संबंधी पहले के दिशा निर्देश बरकरार रखे। अदालत ने स्पष्ट किया कि आयकर अपील अधिकरण तथा सीमा शुल्क उत्पाद और सेवा कर अपील अधिकरण के सदस्य 62 वर्ष की उम्र तक सेवा में रहेंगे, जबकि इनके अध्यक्ष या प्रमुख 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रहेंगे। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर कम करने के साथ ही 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हुआ। इससे देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधार किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। काजू उद्योग पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लागू है। इंस्टेंट कॉफी और उससे बनी चीजों पर कर की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। मत्स्य पालन और समुद्री प्रोसेस्ड फूड पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है। आयुर्वेदिक दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर अब 5% कर लगाया गया है, जिससे लागत में 6-11% तक की बचत हुई है। इन सुधारों ने राज्य के प्रमुख क्षेत्रों पर कर का बोझ कम कर दिया है। रिशु जायसवाल और नीतिका गुप्ता के अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां संस्करण कल से शुरू होकर 28 नवंबर 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित होगा। एक रिपोर्ट।
इस भव्य आयोजन में स्क्रीनिंग के साथ साथ कार्यशालाएं, मास्टर क्लास और फिल्म बाजार आयोजित होंगे, जो देश के नए तथा उभरते फिल्मकारों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगे। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्मकारों को जोड़ना और कला के माध्यम से मित्रतापूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना है। इस साल इफ्फी में 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित होंगी, जिनमें 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 46 एशियन प्रीमियर शामिल हैं। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा।
गोरखपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर BLO द्वारा दिए जा रहे गणना प्रपत्र को भरवाने में सहयोग करने को कहा। केंद्र सरकार उन्नत पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2035 तक ई पासपोर्ट पूरी तरह से लागू करने पर काम कर रही है। इसके तहत सभी नए जारी पासपोर्ट तत्काल ई पासपोर्ट बन जाएंगे, जबकि मौजूदा गैर इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट अपनी समय सीमा समाप्त होने तक वैध रहेंगे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।